छायावाद। छायावाद विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 36 और 86 से युगांत तक की प्रमुख युगवाणी रही, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी प्रभृति मुख्य कवि हुए और सामान्य रूप से भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना वैभव की वह स्वच्छंद प्रवृत्ति है जो देश कालगत वैशिष्ट्य के साथ संसार के सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रही है। स्वच्छंदता की उस सामान्य भावधारा के विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद पड़ा। तत्कालीन पत्रिकाओं से पता चलता है कि छायावाद संज्ञा का प्रचलन 1920 ईस्वी तक हो चुका था। मुकुलधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई थी। इस लेखमाला से पता चलता है कि हिंदी में उसका नितांत अभाव देखकर इधर उधर की कुछ टीका टिप्पणियों के सहारे मुकुलधर पांडे ने वह निबंध प्रस्तुत किया था। इससे स्पष्ट है कि उस निबंध के पहले भी छायावाद पर कुछ टीका टिप्पणी हो चुकी थी। उस युग की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में छायावाद का प्रथम उल्लेख जून 1921 ईस्वी के अंक में मिलता है। किन्नी सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद शीर्षक एक संवादात्मक निबंध लिखा है। इस व्यंग्यात्मक निबंध में छायावादी कविता को टैगोर स्कूल की चित्रकला के समान और स्पष्ट कहा गया है। छायावाद क्या है? प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि इनोटेड काम ऑफ अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा वंग साहित्य की वर्तमान स्थिति की कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे कि यह शब्द मिस्टिसिज्म के लिए आया है। इनोटेड काम ऑफ इस प्रकार सुशील कुमार वाले निबंध में भी छायावादी कविता को कोरे कागज की भांति अस्पष्ट, निर्मल ब्रह्म की विशद छाया, वाणी की निरवता, निस्तब्धता का उच्छ्वास एवं आनंद का विलास कहा गया है। छायावाद के लिए मिस्टिसिज्म शब्द के आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ जाती है और सुकवि किंकर छद्मनामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आजकल के हिंदी कविता और कवि और कविता सरस्वती 6 मई 1927 निबंध से पता चलता है कि जिन कविताओं को और लोग छायावाद कहते थे उन्हीं को वो रहस्यवाद कहना चाहते थे, लेकिन मुकुटधर पांडे जहाँ उनमें आध्यात्मिकता देखते थे वहाँ आचार्य द्विवेदी के लिए वे अन्योक्ति पद्धति से अधिक न थे। छायावाद का प्रचलित अर्थ समझने की कोशिश करते हुए उसी निबंध में आचार्य द्विवेदी कहते हैं, इनोटेड कॉमा, छायावाद से लोगों का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आता। शायद उनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। इनोटेड कॉमा वन। इस तरह पंत के पल्लव और प्रसाद के झरना आदि संग्रहों की कविताओं को 1927 ईस्वी तक अंग्रेजी में मिस्टिसिज्म और हिंदी में कभी छायावाद और कभी रहस्यवाद कहा जाता था। 1928 ईस्वी में प्रकाशित आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य में रहस्यवाद पुस्तक से भी यही सिद्ध होता है। साथ ही शुक्ल जी की विवेचन में से यह भी मालूम होता है कि तात्विक दृष्टि से उन रचनाओं को रहस्यवाद कहा जाता था और रूप विधान की दृष्टि से छायावाद। आगे चलकर जब महादेव वर्मा के प्रियतम संबोधित बहुत सी कविताएं प्रकाश में आ गई तो लोगों ने रहस्यवाद और मिस्टिसिज्म शब्द को केवल इसी प्रकार की कविताओं के लिए सीमित कर दिया। धीरे धीरे छायावाद को इसे अलगा कर रहस्यवाद नाम की एक स्वतंत्र काव्यधारा मान ली, जिसका विकास वेद उपनिषद से प्रारंभ होकर कबीर मीरा आदि से होता हुआ हिंदी में महादेव वर्मा तक पहुँचा है। फलतः छायावाद केवल आधुनिक काव्य प्रवृत्ति रह गई है और रहस्यवाद सनातन तथा चिरंतन। सन 1930 के आसपास हिंदी छायावादी कविताओं को आलोचना के सिलसिले में अंग्रेजी के रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स आदि का नाम लिया जाने लगा और इस तरह छायावाद के साथ रोमांटिसिज्म नाम भी जुड़ गया। आचार्य शुक्ल ने रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द चलाया और वह चल भी पड़ा, किंतु उनके स्वच्छंदतावाद की परिभाषा इतनी सीमित थी कि वह संपूर्ण छायावादी कविताओं को न घेर सकी। उसकी सीमा में केवल श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, गुरु भक्त सिंह, सिया राम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, उदय शंकर भट्ट और संभवतः नवीन तथा माखनलाल चतुर्वेदी ही आ सके। उनके अनुसार प्रकृति प्रांगण के चराचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधियों पर आत्मीयता, व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पदचिन्ह हैं। इस प्रकार शुक्ल जी के स्वच्छंदतावाद में छायावाद के रस भावना के लिए कोई जगह न थी। फलतः स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म का अनुवाद होते हुए भी छायावादी कविता का केवल एक अंग बनकर रह गया और धीरे धीरे छायावाद संपूर्ण रोमांटिसिज्म का वाचक बन गया। आजकल हिंदी में जब छायावाद कहा जाता है तो उसका मतलब उसी तरह की कविताओं से होता है जिन्हें यूरोपीय साहित्य में रोमांटिसिज्म की संज्ञा दी जाती है और जिसके अंतर्गत रहस्य भावना तथा स्वच्छंदता भाव के साथ साथ और भी कई बातें मिलती हैं। छायावाद संबंधी परिभाषाओं और आलोचनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि आलोचकों ने प्रायः किसी एक कवि अथवा किसी एक कविता संग्रह को ध्यान में रखकर छायावाद की विशेषताओं का निरूपण किया है। इस तरह उन्होंने शुद्ध छायावाद की एक सीमा रेखा खींचकर छायावाद की अन्य कवियों तथा कविताओं को उससे बाहर कर दिया है। जैसे किसी ने पंत जी को ही शुद्ध छायावादी माना है तो दूसरे से उनकी संपूर्ण रचनाओं में भी केवल पल्लव को शुद्ध छायावाद के अंतर्गत स्वीकार किया गया है और फिर पल्लव में भी अपनी रुचि तथा पूर्व निश्चित धारणा के समर्थक कविताओं के आधार पर छायावाद की सामान्य विशेषताएं गिना दी हैं। इस तरह यही नहीं कि प्रसाद निराला महादेवी की बहुत सी कविताएं छायावाद से बाहर हो जाती हैं, बल्कि स्वयं पंत जी की वीड़ा ग्रंथि और गुंजन की काफ़ी रचनाएं छायावादेतर ठहरती हैं। कुछ आलोचक को इसकी परवाह नहीं है, इसका शुद्ध छायावाद अपनी जगह पर कायम है और वह कायम रहेगा भले ही उसकी सीमा से छायावाद का अधिकांश साहित्य बाहर पड़ा रह जाए। जाहिर है कि वह सीमा छायावाद की नहीं बल्कि उन आलोचकों की है। छायावाद की विशेषताओं का आकलन छायावाद नाम से प्रख्यात संपूर्ण कविताओं के आधार पर होना चाहिए। इस ढंग से विचार करने पर पता चलता है कि छायावाद विविध, यहाँ तक कि परस्पर विरोधी से प्रतीत होने वाली काव्य प्रवृत्तियों का सामूहिक नाम है और छानबीन करने पर इन प्रवृत्तियों के बीच आंतरिक संबंध दिखाई पड़ता है। स्पष्ट करने के लिए यदि भूमिति से उदाहरण ले तो कह सकते हैं कि यह एक केंद्र पर बने हुए विभिन्न वृत्तों का समुदाय है। इसकी विविधता उस शब्द दल के शतदल के समान है जिसमें एक ग्रंथि से अनेक दल खुलते हैं। एक युग चेतना से भिन्न भिन्न कवियों के संस्कार, रुचि और शक्ति के अनुसार विभिन्न रूपों में अपने को अभिव्यक्त किया है। कहीं एक पक्ष का अधिक विकास हुआ तो अन्यतः दूसरे पक्ष का। एक छवि के असंख्य उद्गण, एक ही सब में स्पंदन। दूसरी ओर छायावाद की विभिन्न प्रवृत्तियों और विशेषताओं की गणना करने वाले आलोचकों ने भी छायावाद को एक स्थिर और जड़ वस्तु मानकर विचार किया है। उनसे इस तथ्य की अपेक्षा हो गई है कि छायावाद एक प्रवाहमान का विधारा थी, एक ऐतिहासिक उत्थान के साथ उसका उदय हुआ और उसी के तहत उसका क्रमिक विकास तथा ह्रास हुआ। छायावाद के 18-20 वर्षों के इतिहास में अनेक विशेषताएं जो आरंभ में थी वे कुछ दूर जाकर समाप्त हो गई और फिर अनेक विशेषताएं जुड़ गई। निस्संदेह छायावाद के उदय और अस्त की चर्चा तो हुई है, लेकिन उसके क्रमिक विकास का विचार बहुत कम हुआ है। उसका मुख्य कारण यही है कि भाववादी आलोचकों ने छायावाद को प्रायः समाज से ऊपर सर्वथा शुद्ध भाव राशि मानकर विचार किया है। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है, किंतु पर्यवसान संसार और व्यक्ति के स्थायी शत्रुता में हुआ। 20वीं सदी की काव्य सीमा में प्रवेश करने पर हिंदी कविता के पाठक का ध्यान सबसे पहले जिस विशेषता की ओर जाता है वह है वैयक्तिक अभिव्यक्ति। व्यक्तिगत अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में आधुनिक कवि ने जो निर्भीकता और साहस दिखाया वह पहले किसी कवि ने नहीं मिलता। आधुनिकता लिरिक अथवा प्रगीत इसी वैयक्तिकता के प्रतीक है। मध्ययुग के संत भक्त और रीतिवादी कवि प्रायः निर्वैयक्तिक ढंग से अपनी बातें कहते थे। संतों और भक्तियों के विनय के पदों में जो वैयक्तिक ढंग दिखाई पड़ता है वह केवल भगवान के प्रति निवेदन है। अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में वे प्रायः मौन ही रहते थे और काव्य में अपने प्रणय संबंधों की चर्चा करने की बात तो उस समय सोची भी नहीं जा सकती थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय व्यक्ति सामाजिक मर्यादाओं से कितना बंधा हुआ था। आधुनिक कवि ने जीवन की इस संकुलता तथा अतिशय सामाजिकता को तीव्रता के साथ अनुभव किया। वॉर्ड्सवर्थ के शब्दों में उसे लगा कि द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। प्राचीन कृषि व्यवस्था पर आधारित समाज ऐसा ही होता है। इसके छोटे दायरे में लोगों को अपने पड़ोसी के अच्छे बुरे सभी कार्यों में जरूरत से ज़्यादा दिलचस्पी रहती है और कभी कभी यह सहायक की जगह बाधक प्रतीत होने लगती है। आधुनिक शिक्षा से प्रभावित युवक ने इस व्यक्तिरोध सामाजिकता का बहिष्कार करके पहले तो निर्जन प्रकृति में आश्रय लिया, जैसा कि पंत जी के वक्तव्यों से पता चलता है, और फिर धीरे धीरे शक्ति संचय करके समाज में आकर उन रूढ़ियों के प्रति अपने वैयक्तिक विद्रोह का उद्घोष किया। पहले तो उसे पशु पक्षियों की तरह प्राकृतिक जीवन में ही अपनी निजता, स्वतंत्रता और आत्मभाव की संभावना दिखाई पड़ी, किंतु बाद में जब कदम कदम पर उसका संघर्ष सामाजिक रूढ़ियों से होने लगा तो उसने अपने व्यक्तित्व को उसके प्रतिरोध में खड़ा किया। आत्मकथा उसका विषय हो गया और मैं उसकी शैली। प्रसाद ने तो स्पष्टतः अपनी आत्मकथा का स्पष्टीकरण ही लिख डाला और निराला ने सबकी ओर से स्वीकार किया कि मैंने मैं शैली अपनाई। अपनी दुर्बलताएं भी उसने साहस के साथ कहीं और जिन बातों को अब तक लोग समाज के भय से छिपाते थे उन्हें भी छायावादी कवि ने खोल कर रख दिया। पंत जी ने उच्छ्वास, आंसू और ग्रंथि में पड़े अनुभूति की अबाध अभिव्यक्ति की। उच्छ्वास की सरल बालिका कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं है और न उसके साथ व्यक्त किया हुआ प्रणय संबंध कोई आध्यात्मिक भावना है। सीधे शब्दों में बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, लेकिन समाज तो ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त कर नहीं सकता, इसलिए उस लांछन के विरुद्ध अपने प्रेम की पवित्रता को घोषित करते हुए कवि कहता है, कभी तो अब तक पावन प्रेम नहीं कहलाया पापाचार, हुई मुझको ही मदिरा आज हा या गंगा जल की धार। प्रसाद का आंसू भी मूलतः इसी प्रकार का मानवीय प्रेम काव्य है, जिसके द्वितीय संस्कार में कवि ने सामाजिक भय से रहस्यात्मकता और लोकमंगल का गहरा पुट दे दिया है। फिर भी असलियत जग जाहिर रही है और आचार्य शुक्ल से भी कहे बिना न रह गया कि इन रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधुचर्या के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिला, अथवा यूं कहें कि इनकी प्रणयानुभूति ससीम से कूदकर असीम पर जा रही है। छायावाद की इस प्रणय संबंधी वैयक्तिकता का प्रसार क्रमशः जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी हुआ। निराला का विप्लवी बादल इसी वैयक्तिक विद्रोह का अग्रदूत है। सरोज स्मृति और वनवेला में यही वैयक्तिक विद्रोह और भी खुलकर व्यक्त हुआ। ये रचनाएं कवि की आप बीती से अनावृत आख्यान है। जिस तरह की निजी बातें यहाँ एकदम खरे ढंग से कही गई हैं, हिंदी में पहले कभी नहीं कही गई। जिस अहमवादी कवि के लिए अहंकृति में झंकृति जीवन हो, उसकी कविताएं भी स्वभावतः अहंकृति की झंकृति होंगी। जब पुरुष व्यक्ति की यह स्थिति है तो इस पुरुष प्रधान समाज में नारी की आत्माभिव्यक्ति पर कितनी रोक हो सकती है तथा एक नारी को स्पष्ट आत्माभिव्यक्ति पर कितनी कठिनाई आ सकती है, इसका पता महादेवी जी के रहस्य गीतों से ही लगाया जा सकता है। फिर भी महादेवी जी ने कहीं कहा है कि आज का साहित्यकार अपनी प्रत्येक सांस का इतिहास लिख लेना चाहता है। यही नहीं, छायावाद पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति प्रधान युग में व्यक्तिगत सुख दुख अपनी अभिव्यक्ति के लिए आकुल थे, अतः छाया युग का काव्य स्वानुभूति प्रधान होने के कारण वैयक्तिक उल्लास विषाद का सफल माध्यम बन सका। छायावाद युग का मानव अपनी व्यक्तिकता की खोज के लिए कितना आकुल है, इसे कामायनी के मनु के मुख से सुने। वन गुहा कुंज मरुवंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। आत्मविकास के टोह में निकला हुआ यह आधुनिक मनु धीरे धीरे युगान तक जाते जाते इतना व्यक्तिवादी हो गया कि बोल उठा, मैं तो अबाध गति मृत सदृश हूँ चाह रहा अपने मन की। इस स्वेच्छाचारी मनु ने आखिर संपूर्ण समाज के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। इसने आरंभ में प्रजातंत्र की नींव डाली, उसी ने सर्वसत्ताधारी निरंकुश शासक का पद प्राप्त कर लिया और इस समाज विरोध के फलस्वरूप उसे घायल होकर अंत में समाज से दूर कैलाश शिखर पर पलायन करना पड़ा। आरंभ में जिस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व की खोज के लिए निर्जन प्रकृति में प्रवेश किया था, अंत में उसी ने समाज से भागकर प्रकृति के कल्पना लोक में शरण ली, जिससे आरंभिक आत्मप्रसार में समाज के सामंती मूल्यों को चुनौती थी। उसके अंतिम अहम भाव में संपूर्ण समाज, विशेषता अपने ही मध्यवर्गीय समाज की व्यावसायिकता से घबराहट का तीव्र असंतोष और निराशा है, जिसकी आरंभिक एकांत प्रियता में शक्ति थी, उसकी अंतिम असामाजिकता में निराशा है। वह समय था जब कोलाहल की ध्वनि तजकर कभी सागर के निर्जन तट पर भागने लगा, परंतु यह स्थिति छायावाद के अंतिम दिनों में आई और प्रसाद में ही नहीं बल्कि निराला पंत महादेवी सब में। सबसे पहले जो आत्मविकास की भावना थी, उसने जीवन में तथा काव्य में भाव तथा कल्पना का अभूतपूर्व वैभव विस्तार किया। वस्तुतः यह व्यक्तिवाद छायावादी काव्य के विविध वृत्तों का केंद्र बिंदु है। व्यक्तिवाद ने छायावादी कवि में यदि एक ओर वैयक्तिक अभिव्यक्ति की आकांक्षा उत्पन्न की तो दूसरी ओर संपूर्ण दृष्टिकोण को व्यक्तिनिष्ठ बना दिया। छायावादी कवि संसार के सभी वस्तुओं को आत्मरंजित करके देखने का अभ्यस्त हो गया। विश्व की व्यथा से स्वयं व्यथित होने की जगह वह अपनी व्यथा से विश्व के व्यथित होने की कल्पना करने लगा। छायावाद के व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण को समझने के लिए उसके पूर्ववर्ती द्विवेदी युग के विषयनिष्ठ अथवा तथ्यपरक काव्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। द्विवेदी युग का काव्य शुक्ल जी के शब्दों में जहाँ इतिवृत्तात्मक था, वहीं छायावादी काव्य रागात्मक हो उठा। निर्जीव तथ्यों के स्थान पर छायावादियों के चुने हुए रागात्मक तथ्यों को राग रंजित करके सत्य के रूप में उपस्थित किया। इस व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण की विशेषता बतलाते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय व्याख्यान माला के अंतर्गत तथ्य और सत्य 1923 व्याख्यान में रविंद्रनाथ कहते हैं कि चित्रकार जब चित्र बनाने बैठता है, तब वह तथ्य का संवाद तेरे नहीं बैठता। वह तथ्य को उसी हद तक स्वीकार करता है जिस हद तक उसको उपलक्ष्य करके किसी एक सुषमा का छंद विशुद्ध रूप में मूर्तिमान हो उठता है।